ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय संख्या 14। अध्याय का नाम है राजा चित्रकेतु का शोक। श्लोक संख्या 55। नाहि क्रमश्चेदहि मृत्यु जन्मनो शरीरीणामस्तु तदात्मकर्मभिः या स्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवश्वसि नाहि क्रमश्चेदहि मृत्यु जन्मनो शरीरीणामस्तु तदात्मकर्मभिः या स्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं वृचस्यसि नाहि क्रमश्चेदहि मृत्यु जन्मनो शरीरीणामस्तु तदात्मकर्मभिः या स्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं वृचस्यसि
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की नहीं ही निसंदेह क्रम तिथि क्रम चेत यदि यह इस भौतिक जगत में मृत्यु जन्मनो तथा जन्म का शरीरणाम बद जीवों का जिन्होंने देह धारण करना स्वीकार किया है अस्तु होवे तत् वह आत्मकर्म भी अपने अपने कर्मों के फल के द्वारा या जो स्नेहपाशः स्नेहबंधन निजसर्ग अपनी सृष्टि वृद्धये बढ़ाने के लिए स्वयं अपने आप कृतः बनाई हुई ते तुम्हारे द्वारा तम उसे इमं यह विवश्यसि तुम काट रहे हो। अनुवाद। हे ईश्वर, तू यह कह सकता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीता और मरता है। फिर भी यदि कर्म इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उस पर निर्भर करते हो, तो फिर नियंता या ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है। पुनः यदि तू कहे कि नियंता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि माया में कर्म करने की शक्ति नहीं होती, तो कोई यह भी तो कह सकता है कि यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए स्नेह बंधन टूटते हैं तो स्नेह पूर्वक संतान को पालने से लाभ क्या है। तब तो सभी लोग अपने संतानों की उपेक्षा करने लगेंगे। चूंकि तूने स्नेह के उन बंधनों को काटा है जिसके वशीभूत होकर माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, इसलिए तू अनुभवहीन एवं मूर्ख प्रतीत होता है। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्धरति किन्तुम च भक्ति भाजम, जिसने कृष्ण भक्ति ग्रहण कर रखी है उसे कर्म फल प्रभावित नहीं कर पाते। इस श्लोक में कर्म पर अत्यधिक बल दिया गया है जो कर्म मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इसके अनुसार मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए और कर्म का फल देने वाला ईश्वर है। परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने वाले कर्म के सूक्ष्म नियमों को सामान्य बदजीव नहीं समझ सकता। इसलिए कृष्ण का कथन है कि जो यह जान लेता है कि वह किस प्रकार कार्य करते हैं और उन सूक्ष्म नियमों से प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं, तो वह उनके अनुग्रह से तुरंत मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म संहिता का कथन है, कर्माणि निर्धरति किन्तुं च भक्ति भाजम। मनुष्य को चाहिए कि बिना किसी हिचक के भक्ति करे और ईश्वर की परम इच्छा पर हर काम छोड़ दे, इससे वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रह सकेगा।
हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस अध्याय का नाम है राजा चित्रकेतु का शोक, और श्लोक के अनुवाद सुनकर भी आप में से काफी लोग विस्मित हो गए होंगे कि ये क्या बोला जा रहा है श्लोक में। तो उसका बैकग्राउंड बताएंगे तो फिर हम समझ पाएंगे। जैसा कि आप में से कुछ भक्त लोग तो इस कथा से परिचित हैं, कुछ भक्त लोग शायद पहली बार ही आ रहे हो, तो उनकी जानकारी के लिए राजा चित्रकेतु वृत्तासुर बनते हैं। वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध होता है और वृत्तासुर भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त होते हैं। वृत्तासुर के वध के बाद परीक्षित महाराज, जो कि कथा सुन रहे सुखदेव गोस्वामी से, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि वृत्तासुर असुर होते हुए, राक्षस होते हुए इतने उच्च कोटि का भक्त कैसे। तो फिर सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज जी को, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को वृत्तासुर का भूतकाल बताते हैं कि पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु थे और इनकी 1 करोड़ रानियां थी, और 1 करोड़ रानियां सबकी सब वांछ थी, उनकी एक भी संतान नहीं थे। और राजा चित्रकेतु के राज्य में हर तरह की समृद्धि थी, बस उनके पास पुत्र नहीं था। इसका उनको बहुत दुख था। हालांकि वो पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम थे, लेकिन ऐसा विधाता का अरेंजमेंट था कि उनको पुत्र उनके भाग्य में नहीं था। इसलिए 1 करोड़ रानियां होते सबकी सब वांछ, हालांकि सब दिखने बहुत सुंदर और सुशील, लेकिन एक भी संतान नहीं, तो बहुत दुखी थे। और उनको लगता था कि उनके जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता, जब तक उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी वो दुखी ही रहेंगे। हालांकि उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो अपने आप को इस वातावरण में संभाल नहीं पा रहे थे और चाहते थे किसी न किसी ढंग से उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तभी अंगीरा ऋषि भ्रमण करते करते उनके राजे दरबार में पहुंच गए, और राजा ने अपने मन की व्यथा उनको सुनाई, उनकी सेवा की, और अंगीरा ऋषि समझ गए कि अब ये आध्यात्मिक संदेश प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा दुख में है। तो अंगीरा ऋषि ने बोला, ठीक है कि मैं तुम्हें ये खीर देता हूं, ये अपने किसी एक रानी को खिला दीजिए और इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने 1 करोड़ में से अपने सबसे बड़ी रानी को चुना, कृत्यदुति, और उसको खीर खिलाई, और उसके बाद भगवत कृपा से उनको एक संतान की प्राप्ति हो गई। और अंगीरा ऋषि ने जब एक प्रसाद दिया था और बोल दिया था, आपका जो पुत्र होगा वो हर्ष शोक होगा, आपको आनंद भी देगा और शोक भी देगा। तो राजा ने, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी भौतिक कामनाओं से अंधा था, उसने शोक तो सुना ही नहीं, बोले बस कैसा भी दो, पुत्र तो दो, बड़ा हो गया थोड़ा आज्ञा का पालन नहीं करेगा बिगड़ जाए, लेकिन पुत्र तो है, दे दो किसी भी ढंग से। उन्हें स्वीकार कर लिया, और ये कहते ही अंगीरा ऋषि चले गए। और उसके बाद जब उनका पुत्र हुआ तो राजा ने बहुत हर्ष मनाया, श्री श्री राधा राधे करमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौनिका की। उसके बाद क्या होता है, जब पुत्र कृतद्युति के पास होता है, उसकी जो एक रानी है, तो राजा अपने पुत्र से आसक्ति कारण रानी से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है, और एक ही रानी से आसक्त है। और कितनी रानियां हैं उसके? 1 करोड़। आप सोचिए बाकी रानियों को कैसा लग रहा होगा, बाकी कितनी रानियां बच गई? 99,999,999 रानियां बिल्कुल गुस्से में। उनको ऐसे लग रहा था कि हमारी स्थिति तो नौकरानी से भी बदतर है, क्योंकि जो नौकरानियां हैं वो भी राजा की कुछ डायरेक्ट सेवा कर लेती थी, प्रत्यक्ष सेवा। यहां तो राजा देखता भी नहीं उनकी तरफ, सोचता भी नहीं, पूरा दिन कृतदुतु के महल में और बच्चे के साथ खेलता रहता है। तो रानियों कितना सहन कर सकती थी वो, वैसे भी स्त्री और सब स्त्रियां एक जैसी, और सब रानियां पहले सबको एक समान उनका व्यवहार होता था, अब सारा दिन कृतदुति के साथ और 99,999,999 रानियां द्वेष की अग्नि में जलना शुरू हो गई। अब उनके लिए द्वेष को सहन कर पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने एक इष्ट गोष्ठी की, सब में बुलाकर कॉन्फ्रेंस किया कि हमारे दुख का कारण क्या है। तो हमारे दुख का कारण है कृतद्युति, और कृतद्युति को इतना सुख क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि उसके पास जो धन है वो हमारे पास नहीं है। द्वेष का मतलब यही होता है कि जो दूसरे के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी कमीज मेरी कमी से सफेद क्यों? उसके पास पुत्र है, हमारे पास पुत्र नहीं है और हमारे पास पुत्र आ नहीं सकता, क्योंकि खाली इसको एक स्पेशल बेनेडिक्शन, विशेष आशीर्वाद मिला है और ये अंगिरा ऋषि और तो आशीर्वाद देंगे नहीं। अब सब रानियों ने बोला कि इसका एक ही कारण है हम सबके दुखों का, ये पुत्र, तो इसका वध कर दिया जाए। देखिए द्वेष के कारण व्यक्ति कितना कठोर हृदय का हो जाता है। एक स्त्री एक दूसरे के पुत्र को मारने को तैयार हो गई, तो उन्होंने उस बेटे को विष पिला दिया। रानी कृतदूति ने तनिक मात्र भी संदेह भी नहीं किया कि उसकी बाकी रानियां उसके पुत्र का वध कर देंगे। तो ऐसे बच्चा लेटा हुआ था, उसने अपनी नौकरानी को बोला बच्चे को जगा के लाओ, तो उठ ही नहीं रहा, तो उसे सो रहा होगा। तो नौकरानी ने उठाया बार बार, जब नहीं उठा तो नौकरानी समझ गई कि ये अब मृत अवस्था को प्राप्त हो गया है। तो उसने जोर जोर से आलाप करना शुरू कर दिया, अपने वक्ष स्थल को पीटना शुरू कर दिया। और जब ये देखा, रानी ने देखा तो वो भी नहीं देख पाई। अब सोचिए इतने सालों से राजा की कोई संतान नहीं हुई, एक विशेष प्रबंध से एक ही संतान उत्पन्न हुई और उसका भी वध हो गया, बिल्कुल असहनीय था। तो रानी जोर जोर से रोने लगी। और जब रानी की जोर जोर से चिल्लाहट को पूरे राज दरबार में सुना तो सब लोग इकट्ठे हो गए। और राजा ने भी जब सुना तो राजा अपने मंत्रियों के साथ और पार्षदों के साथ ब्राह्मणों के साथ आया। उसने देखा कि बेटा उसका ऐसी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो राजा कभी गिरता था, कभी उठता था, फिर रोता था, फिर गिरते पड़ते किसी ढंग से वो पुत्र के पास पहुंचा और उसको उठा रहे हैं, लेकिन पुत्र एकदम उसका शव है, वो तो उसमें कोई जीवन नहीं है। और ये स्थिति को देखकर राजा भी मूर्छित हो गया। और फिर रानी जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से रोते रोते वो भगवान से कुछ कह रही है। पिछले श्लोक से उसने बोलना शुरू किया। तो सुनिए कि जब व्यक्ति शोक में होता है तो कैसी कैसी बातें करता है भगवान से। उससे पहले बोली, अरे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन मूर्ख है, क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उस पुत्र की मृत्यु होने दी और इस तरह से अपने सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया। यदि तू नियम भंग करने वाला पर ही तुला है तो निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु और निर्दय है। तू निर्दय है, तू शत्रु है, तू मूर्ख है, तू अनुभवहीन है। एक पिता के सामने पुत्र की हत्या कैसे, उनका वध कैसे होने दिया, इसका ना तुम्हें अपने ही नियमों के विपरीत जा रहे हो। अगर अपने ही नियमों के विपरीत जा रहे हो तो अपने हृदय में दया नहीं है और तुम सब जीवों के शत्रु हो। और आज के श्लोक में बोल रहे हो, ठीक है हे ईश्वर, तू ये कह सकता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा सोच रहे हो कि भगवान बोले ऐसा किसने बोला नियम है कि पिता के होते पुत्र नहीं मर सकता या पिता को पुत्र प्राप्त होना ही होना है, ऐसे बोल रहे हो नियम के विपरीत। क्या कहां भी नियम के विपरीत, बोले तुम कह सकते हो कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पिता के सामने पुत्र का वध ना हो, लेकिन प्रत्येक, और आप कह सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीता और मरता है। तो रानी कह रही रोकर, अगर कर्मों का फल इतना प्रबल है तो तुम्हारी आवश्यकता ही क्या है। अगर कर्मों के अनुसार किसी ने जन्म लेना है, कर्मों के अनुसार किसी को मरना है, तो तुम किस लिए हो, तुम्हारा फायदा ही क्या, तुम हो किस लिए। कर्मों के साथ जिएंगे, कर्मों के साथ मर जाएंगे। तो ईश्वर बोलेंगे नहीं नहीं, मेरी आवश्यकता इसलिए, भौतिक प्रकृति जड़ है, कैसे काम करेगी। जब तक मैं माया रक्षण प्रकृति सुत सचराचरम, जब तक मैं शक्ति प्रदान नहीं करूंगा भौतिक प्रकृति चलेगी नहीं। बोले ठीक है, तुम ये कह सकते हो, तुम्हारा ये तर्क स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी बिना ये भौतिक शक्ति कार्य नहीं कर सकती, तो तुम्हारे द्वारा यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए स्नेह बंधन टूटते हैं तो स्नेहपूर्वक संतान को पालने से क्या लाभ। अगर तुम कह सकते हो कि तुम्हारी शक्ति से ही भौतिक प्रकृति कार्य कर रही है, भौतिक प्रकृति के नियम चल रहे हैं, तो ये भौतिक प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि इसमें स्नेह का कोई वैल्यू नहीं है। स्नेह पाश को काट रहा है। और अगर कर्म ही स्नेह से ऊपर है तो कौन माता पिता अपनी संतान को स्नेह से पालेगा, तो कभी भी छिन जाएगी। हमें तो मालूम नहीं कर्म बंधन क्या है, तो स्नेह से पालने का फायदा ही क्या। ये कर्म बंधन स्नेह पाश को काट रहे हैं, तो चूंकि तूने स्नेह के उन बंधनों को काटा है जिसके वशीभूत होकर माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, इसलिए तू अनुभवहीन और मूर्ख प्रतीत होता है। देखिए तो हमारे जीवन में भी कई बड़ी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जब हमारे साथ ऐसा अनहोनी होती है जिसे हम कहते हैं अनहोनी, और फिर हमारा भगवान से विश्वास उठ जाता है। या फिर कई बार हम हिंदी सिनेमा में भी देखते हैं कि हीरो मंदिर में जाके भगवान को खूब गालियां सुना रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं ना, तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है, हमारा भी विश्वास डगमगा जाता है, हमें लगता है क्या फायदा। और आसपास के पड़ोसी भी बोलते हैं अरे आपके साथ ऐसा हो गया, आप तो माला करते हो, आप रोज मंदिर जाते हो, आप तो धोती डालते हो, तिलक लगाते हो, कंठी डालते हो, आपके साथ भी ऐसा हो गया। और हम उन्हें तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, अंदर से हम भी कमजोर पड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। और ये दिखाता है कि ये भगवान को मूर्ख बता रहा है बदजीव, वास्तव में बदजीव मूर्ख है, क्योंकि बदजीव को कंडीशन सोल को ये मालूम नहीं है कि प्रकृति के नियम कैसे कार्य करते हैं। तो अज्ञानता के कारण वो भगवान पर दोषारोप कर रहा है। केवल भगवान पर ही नहीं, कोई भी बदजीव अगर किसी भी विपरीत परिस्थिति में किसी भी जीव के प्रति आरोप लगाता है या उसकी निंदा करता है या उसकी शिकायत करता है तो ये नास्तिकवाद का लक्षण है, अज्ञानता का लक्षण है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है, हम बोलते हैं ये कारण है, इसके कारण सब कुछ हुआ, ये है, ये है, वो है, ये है। अक्सर हम देखते हैं लोग सड़क पे खड़े होते हैं, सब सरकार को ब्लेम दे रहे होते हैं, सब उसको ब्लेम कर रहे होते हैं, ब्लेम गेम चलता रहता है। तो जब ये ब्लेम करने की आदत है, आरोप लगाने की आदत है, किसी के कंप्लेंट करने की आदत है, निंदा करने की आदत है, तो वास्तव में हम अज्ञानता प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि जो एक शुद्ध भक्त होता है वो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखता है। तो यहां जो रानी है वो मोह के कारण उसका ज्ञान ढक गया है, वो अंधी हो गई है, तो वो उल्टा सीधा भगवान को बोल रही है कि तुम मूर्ख हो, निर्दयी हो, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें सृष्टि चलाना ही नहीं आता। इसी ढंग से जब हमारे जीवन में कुछ हमारी इच्छाओं की विपरीत घटना घटती है तो हम कहेंगे नहीं नहीं हम भगवान को तो ऐसी गालियां नहीं देते हैं, यहां के राधा रविकर्मन को हम गालियां नहीं देते हैं, लेकिन राधा रविकर्मन के भक्तों को हम गालियां देना शुरू कर सकते हैं, है ना, उनके प्रतिनिधियों को हम बोल सकते हैं ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो ये भी एक नास्तिकतावाद की निशानी है, ये भी एक अज्ञानता का लक्षण है। क्योंकि आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनुष्य को परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने वाले कर्म के सूक्ष्म नियमों को सामान्य बदजीव नहीं समझ सकता। इसलिए कृष्ण का कथन है कि जो ये जान लेता है कि वह किस प्रकार कार्य करते हैं और इन सूक्ष्म नियमों से प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं तो वह उसके अनुग्रह से तुरंत मुक्त हो जाता है। जो इस चीज की प्रैक्टिस कर लेता है कि हर स्थिति में कैसे भगवान की कृपा को देखें, हर स्थिति में, सोने की स्थिति में हम नहीं देख सकते, भागवत क्लास में हम सो जाएंगे फिर कुछ नहीं देख पाएंगे, तो हर स्थिति में अगर हम भगवान की कृपा को देखें कि कैसे हर परिस्थिति भगवान द्वारा नियंत्रित है तो हम अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ पाएंगे। अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। संकीर्ण मानसिकता क्या है? मैं और मेरा। और जब हमारे इस मैं और मेरा के इंद्र तृप्ति में झूठे अहंकार में कुछ बाधा पड़ती है तो हम किसी को शत्रु मानते हैं, किसी को मित्र मानते हैं। एक बार राधा प्रासादी मंदिर में श्री प्रभुपाद जी के शिष्य भक्ति रूपा प्रभु लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर के बाद एक भक्त ने क्वेश्चन ही पूछा कि प्रभु जी अगर किसी भक्त ने हमें धोखा दे दिया तो वक्ता ने वहीं रोक दिया, क्या कह रहे हैं आप? बोले प्रभु जी अगर किसी भक्त ने हमें धोखा दे दिया, बोले क्या क्वेश्चन है आपका? कहे किसी भक्त ने धोखा दे दिया, बोले क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए, भक्त ने धोखा दे दिया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं किसी भक्त ने धोखा दे दिया, इसका मतलब भक्ति को आप समझ ही नहीं पाए। हमारे मन में ये भावना है कि उस भक्त ने हमें धोखा दे दिया, तो इसका मतलब आप समझ नहीं पाए कि इसने आपको धोखा दे दिया, भक्त ने धोखा दे दिया, ये संभव नहीं है। तो बड़े ऊंचे स्तर की बात कर रहे थे, उस वक्त बड़ी देर बाद समझ आया कहना क्या चाह रहे हैं। यानी कि हम अगर यही सोचते रहेंगे जब हमारी किसी इच्छाओं के विरुद्ध कोई बात हो जाए, हमें लगे हमें धोखा दे दिया इस भक्त ने, या इस भक्त ने मेरी इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं किया, तो ये उत्तम कोटि के भक्ति के लक्षण नहीं है। हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस संकीर्ण मानसिकता से अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें भगवान के नियंत्रण को देखने का प्रयास करना चाहिए, और अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा? जन्म कर्म च वेद्यम एवं योवेति तत्वता, हम भगवान की दिव्यता को समझ पाएंगे। जब ये श्लोक हम चर्चा करते हैं जन्म कर्म च वेद्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्ता देहं पुनः जन्म नेति मामेति स अर्जुना, तो बोले इसमें बड़ा आसान सा श्लोक है, भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है, जो इसको जान गया वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। जान गया प्रभु जी मैं तो जानने का मतलब ये होता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि प्रत्येक क्रिया के असली नियंत्रक असली भोक्ता कृष्ण है। जब हम प्रत्येक क्रिया के असली नियंत्रण में कृष्ण को देखेंगे तो हम किसी को भी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा पाएंगे, किसी पर दोषारोप नहीं कर पाएंगे, क्यों? भगवान की कृपा को देखेंगे। और इस अंग से हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये बात हमें समझना अति आवश्यक है। प्रभुपाद इस तात्पर्य के पहले ही वाक्य में लिख रहे हैं, कर्माणि निर्हति किंतु च भक्ति भाजम, जिसने कृष्ण भक्ति ग्रहण कर रखी है उससे कर्म फल प्रभावित नहीं कर पाते। ये बात समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे हैं, वन हु टेक्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय कर्मा, जिसने कृष्ण भक्ति ग्रहण कर रखी है, यानी कि जो कृष्ण भक्ति स्वीकार कर लेता है वो कर्मों के कार्य क्षेत्र से बाहर आ जाता है, यानी कि कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए कोई महाभागवत होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम भक्ति स्वीकार करते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, हम कर्मों की, हमारी जो फाइल है कर्मों की, वो सीधा कृष्ण के हाथ में आ जाती है। यमराज जी के ऑफिस से फाइल सीधा कृष्ण के ऑफिस में चली जाती है, वो फाइल यमराज जी के पास नहीं रहती। कोई कह सकता है नहीं नहीं मेरे जैसे भक्ति थोड़ी होगी ऐसी स्थिति, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूं, बहुत मेरे हृदय में गंदी गंदी भावनाएं हैं, वासनाएं हैं। कोई कैसा भी अनर्थों से भरा हुआ जीव क्यों नहीं है, अगर किसी ने सिंसियरली गंभीरता से भक्ति को स्वीकार कर लिया है तो उसके कर्मों का अकाउंट स्वयं भगवान श्री कृष्ण रखते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है, ये भगवान का विशेष प्रेम है हमारे लिए। देखिए भगवान कितने प्रेम करते हैं हमसे, बद जीव भगवान से द्वेष करता है, हम भगवान से द्वेष करके यहां पर आए हैं, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण भक्ति स्वीकार करते हैं, किस कहते हैं कृष्ण सब कुछ भूल जाते हैं, बोले इसकी फाइल मेरे पास भेज दो, अब मेरे को इसके पास लेकर आना ही आना है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, हमारे पूर्व जन्मों के जो पाप और पुण्यों के फल हैं उसको फिर भगवान हमारे जीवन में अरेंज करते हैं, किस समय उसको सुख देना है, किस समय दुख देना है, कितना सुख देना कितना दुख देना है, भगवान मॉनिटर करते हैं, जिससे कि हमारी भक्ति हमारे भगवान के प्रति आसक्ति और बढ़े। इसलिए जब भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं तो उसको भगवान का हाथ देखना चाहिए, भगवान की तरफ से एक सिग्नल देखना चाहिए, ये सिग्नल आया है कि मैं भगवान के प्रति और शरणागत हो जाऊं। लेकिन उस सिग्नल को मैं स्वीकार ना करके किसी को ब्लेम करूंगा, दोषारोप करूंगा, तो मैंने वो मौका खो दिया। हमारा केवल नियंत्रण जीव का छोटा सा जो नियंत्रण है वो केवल एक्शन कर्म पे है, रिएक्शन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, रिएक्शन हमारा भाग्य बन जाता है और फिर उस भाग्य को हमें सहना पड़ता है, लेकिन जो कार्य है वो हमारा क्षेत्र है कर्म करना, तो हम उस पे नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटना घटे तो एक सिग्नल देखना चाहिए, एक सिग्नल आया है और इसको हम अनुकूल रूप से लेंगे तो हम भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ेंगे, प्रतिकूल रूप से देंगे तो हम उदास हो जाएंगे। पर प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि बिना हिचक के हमें भक्ति करनी चाहिए, जब ऐसे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हम भक्ति करने में हिचकते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बिना हिचक के विदाउट एनी रिजर्वेशन हमें भगवान को सरेंडर करना चाहिए, शरणागत करना चाहिए। क्या बता सकते हैं कि कृष्णा भान अमृत का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का सबसे आवश्यक सिद्धांत क्या है जो हमें समझ आना चाहिए, सबसे आवश्यक सिद्धांत क्या है? अच्छी है हा? कृष्णा सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम कंट्रोलर, इससे थोड़ा और आगे, काफी नजदीक है, थोड़ा सा और आगे। हाँ, पूर्ण शरणागति लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हमें मदद करेगा, आप काफी नजदीक हैं कि कृष्ण परम नियंता है, परम भोक्ता है, परम स्वामी है, हम भगवान के दास हैं, सब कारणों के कारण है, हम एक से आसपास ही है, इससे थोड़ा और आगे ये सब। हाँ हाँ जी हाँ, इसके और ये आसपास घूम रहे हैं हम, ताकि और वो बात जब हम समझेंगे फिर हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। सब आप ठीक ही कह रहे हैं, गलत कोई नहीं कह रहा। हम आगे, हाँ सेंटर में क्या है, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं हाँ कोई बात नहीं। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है भक्ति में रहने का हमारा, हम हमेशा ये याद रखें कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, हर परिस्थिति में कृष्णा लव्स में कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। दिखने बड़ी साधारण सी बात लग रही है, लेकिन जब हमारे में कुछ दुख आ रहे हैं, हम याद करें कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, और क्योंकि वो सब कारणों के कारण हैं, हर चीज के नियंता हैं और मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे दुख तो पहुंचाएंगे नहीं, और जो मेरे जो कष्ट आ रहे हैं तो ये मेरे शुद्धिकरण के लिए हैं। तो ये बात हम समझाएंगे तो हम आसपास के वातावरण को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, हम आसपास के वातावरण से अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, हम उसमें भी प्रसन्न रहेंगे। जब हम वातावरण को बदलने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में एक हमारी एक आसुरी प्रवृत्ति बाहर निकल के आती है। गर्मी है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं गर्मी है, सर्दी है तो उसको सर्दी मान लेते हैं। ये जो हिरण्यकश्यप था वो कहता था नहीं, गर्मी में सर्दी होनी चाहिए, सर्दी में गर्मी होनी चाहिए। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, भगवान के नियमों को स्वीकार ना करना। तो जैसा भी हमें वातावरण मिला है उसको हम स्वीकार कर लें और इसमें हम भक्ति करें। एक बार सिविलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस एक पुस्तक है, उसमें प्रभुपाद की वार्तालाप है पुष्ट कृष्ण प्रभु के साथ। तो ये बात चल रही थी तो पुष्ट कृष्ण प्रभु ने पूछा प्रभुपाद जी से, आपका क्या मतलब है? इसका मतलब डेस्टिनी सब कुछ है, भाग्य ही सब कुछ है, जो है उसको होने दें, कुछ ना करें, बच्चा पैदा होता छोड़ दें, ऐसे ही अपने आप बन जाएगा, जो होता होने देंगे, उसका जो भाग्य हो जाएगा। तो प्रभुपाद बोला नहीं, मनुष्य जीवन इसलिए है कि उसको हम प्रशिक्षण दें, आध्यात्मिक प्रशिक्षण दें, इसको इस चीज का प्रशिक्षण दें अहेतु की अप्रतिहता भक्ति का, कि हर परिस्थिति में बिना रुकावट के वो भक्ति करे। तो उसका फिर पुष्प कृष्ण बोला इसका मतलब क्या है कि आध्यात्मिक जीवन में वैदिक संस्कृत में प्रगति की बात की गई है? प्रभुपाद बोला हाँ निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति की बात की गई है। तो जिस जगह प्रभुपाद ने बोला कि हम अपने भौतिक भाग्य को नहीं बदल सकते, मेटेरियल डेस्टिनी कैनॉट बी चेक्ड, सिमिलरली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑल्सो कैनॉट बी चेक्ड। जिस ढंग से हम अपने भौतिक भाग्य को अपने भौतिक प्रयासों से नहीं बदल सकते, इसी ढंग से अगर कोई भक्त वास्तव में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो कोई भी भौतिक परिस्थिति उसको रोक नहीं सकती। जिस ढंग से जिस व्यक्ति बद्ध जीव का भाग्य निर्धारित है उसको एक बूंद भी उसके कोटा से ज्यादा नहीं मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, किसी प्रकार से किसी भक्त ने दृढ़ व्रत होकर भक्ति करने का व्रत ले लिया है तो उसको किसी भी तरह की भौतिक परिस्थिति बाधा नहीं डाल सकती। तो इसका प्रशिक्षण मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य जीवन में हम इस बात का प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो चर्चा क्या चल रही थी, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, हर परिस्थिति हम जाने कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, जब कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पास जो भी कष्ट आ रहे हैं ये भगवान का विशेष मेरे प्रति कृपा है। जब छोटे बच्चे को कुछ सजा मिलती है और उसको बोला जाए कि माँ का विशेष प्रेम है आपके लिए, और जोर से रोता है, जैसे यहाँ पे रानी कृति दूती भगवान को गालियां दे रही है, छोटे बच्चे भी माँ को मारते हैं, पिता को मारते हैं, गंदे हो, ये हो, वो हो, छोटा बच्चा कैसे माता पिता पे आरोप लगाता है और उनको बोलते हैं आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप ये हो, सब तरह के आरोप लगाते हैं। तो वैसे ही रानी कृति दूती की हालत हुई अज्ञानता में है, लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है तो वो समझ सकता है कि भगवान का विशेष प्रेम है मेरे प्रति, भगवान का विशेष प्रेम है। तो भक्त कभी भी कर्म के कारण दुख नहीं पाते, भक्तों के जीवन में दुख आते हैं लेकिन भक्त कभी भी कर्म के कारण दुख नहीं पाते। जो भक्तों के जीवन में दुख आते हैं वो कृष्ण की विशेष अरेंजमेंट्स होते हैं, विशेष कृपा होती है। तो भक्त लोग कर्म नहीं, भक्त लोग जब कर्म नहीं देखते, भक्त लोग होते क्योर माँ, इट्स नॉट कर्मा इट्स क्योर माँ, क्योर माँ, मेरी माँ मुझे क्योर कर रही है, मेरा इलाज कर रही है, ये जो दुख आ रहे हैं ये मेरा इलाज है, ये कर्म नहीं है, क्योर माँ है। और जो बाकी नहीं सोचेंगे तो हम दुखी रहेंगे, कोई सोचेगा बड़ी अच्छी फिलॉसफी है अपने आप को दिलासा देने के लिए, है ना, दुख आ रहे हैं सोच दो भैया कोई बात नहीं, ये भगवान मेरे पर इलाज कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि हाँ गालिब ये ख्याल अच्छा है अपने आप को दिलासा देने के लिए, ठीक है। और अक्सर लोग यही बोलते हैं, पाश्चात्य देश के लोग यही बोलते हैं कि अब जो हिंदू लोग हो भारतवासी हो ये पुनर्जन्म की फिलॉसफी में विश्वास रखते हो, ढीलापन आता है आपके लोगों के अंदर, थोड़ा सब हो रहा है ठीक हो रहा है सहन कर लो, तो ठीक है अपना करो आप, दुख सहने के लिए अच्छा ये सिद्धांत है, नहीं ये दुख सहने के लिए नहीं है, टाइम पास करने के लिए नहीं है, किसी के घर में मृत्यु होगी दुख उसको सांत्वना देने के लिए नहीं है, ये परम सत्य है, इसके आधार पे हमें अपना जीवन जीना चाहिए। अक्सर हम लोग इसको केवल दिलासा देने वाला सिद्धांत ही समझते हैं, दिलासा देने वाला सिद्धांत तो असुर भी समझते हैं। भागवतम दशम स्कंद में जब शेष संतानों की मृत्यु का वध कर दिया कंस ने देवकी और वसुदेव का, उसके बाद
बलराम जी प्रकट होते हैं और उसके बाद स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं और वसुदेव उनको गोकुल में ले जाकर एक्सचेंज करके लाते हैं। योग माया आती है और जब योग माया स्वयं कंस के सामने प्रकट होती है और उसके हाथ से निकल जाती है, तब कंस को बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने क्या कर दिया, अपनी बहन के 6 पुत्रों का वध कर दिया। तो फिर कंस देवकी और वसुदेव को बुलाता है, उनसे क्षमा मांगता है और बहुत बड़ा लेक्चर देता है। बोले सब ये विधाता का नियम है, क्या कर सकते हैं, है ना, जन्म मृत्यु सब उसके हाथ में है, जो होना था हो गया। तो कंस तो ये सिद्धांत उनको दिलासा देने के लिए बोल रहा है, लेकिन देवकी वसुदेव ने इनको ऐसा स्वीकार कर लिया। देवकी वसुदेव ने तुरंत कंस को क्षमा कर दिया, लोग समझ गए। आप देखिए किसी के 6 संतानों का वध कर दिया जाए उसकी क्या स्थिति होगी। लेकिन देवकी वसुदेव उन्होंने इस सिद्धांत को परम सत्य माना और कंस ने केवल दिलासा देने के लिए सिद्धांत बोला। अब क्या कर सकते हैं, जैसे विधाता का नियम है, करना ही पड़ेगा। अगले दिन जाके उसने मंत्रियों को ये बताया, मंत्रियों बोला बिल्कुल गलत है, कृष्ण कभी भी कुछ कर सकता है, उसकी नियत दोबारा से बदल गई। लेकिन देवकी वसुदेव ने यह सुनते ही कि हाँ बात तो ठीक कह रहा है, उन्होंने कंस को क्षमा कर दिया। तो अगर हम भी अपने जीवन में केवल दिलासा देने के लिए या दूसरों को सुनाने के लिए सिद्धांत रखेंगे, किसी पर हम खुद अत्याचार करने बोले कोई बात नहीं है तो विधाता का नियम है, तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, लेकिन अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे तो ये वास्तव में हम लोग निश्चित रूप से भगवत धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। वास्तव में इस होलीनेस भक्ति भागवत महाराज अपने एक सेमिनार में बता रहे थे कि विनम्रता का लक्षण क्या है। विनम्रता का लक्षण ये है कि हर परिस्थिति में साधक उसी उत्साह के साथ जप करता रहता है, ये विनम्रता का लक्षण है। वो अपने चैंटिंग को नहीं रोकता। थोड़ा सा हमारे जीवन में कुछ नीचा है, हमारी चैंटिंग उल्टी सीधी हो गई, जप में मन नहीं लग रहा। लेकिन जिस व्यक्ति को ये विश्वास है कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे जीवन में कुछ भी गलत घटना घटित नहीं हो सकती, कैसे हो सकती है, जब मैंने कृष्ण की शरण ले ली तो मेरे जीवन में गलत हो ही नहीं सकता। जब मेरी फाइल पर्सनली भगवान देख रहे हैं तो कैसे गलत होगा। जो मुझे मार पड़ रही है, थप्पड़ पड़ रहे हैं, ये भगवान मुझे सुधार रहे हैं, बस इसमें क्या दिक्कत है। इस बात को जो नहीं मानेंगे तो क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, हम ये समझेंगे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन की पूर्णता ये नहीं है कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, कि मैं मुझे कोई मन का कष्ट ना हो, शरीर का कष्ट ना हो, इसी तरह से स्वस्थ रहते हुए हरि नाम लेता रहूं, हरे कृष्ण हरे, बड़ा अच्छा है ना। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमारे तिलक लगाने से, कंठी डालने से भौतिक प्रकृति के नियम बदलेंगे नहीं। हम सबको जन्म मृत्यु जुड़ा, जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु को सामना करना ही पड़ेगा, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेशों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति में आने से, कृष्ण भक्ति करने से हमारे जो एक क्लेश है उसकी मात्रा भगवान की कृपा से कम कर दी जाती है। लेकिन हमें फिर भी आशा नहीं रखनी चाहिए कि भगवान कम कर दो, क्यों नहीं कम किया। हमें देखना है कि भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हर परिस्थिति में हमें हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग उसी उत्साह से करते रहना चाहिए। नहीं तो अनेक चतुर्थी की तरह हम भी भगवान को दोष आरोप लगाएंगे कि तुम बुद्ध हो, मूर्ख हो, आपको सृष्टि करनी नहीं आती, निर्दयी हो, है ना। अक्सर फिर यही लोग बोलते रहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो भक्तों के मन में भी एक प्रश्न है, इसके अलावा हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, हम अभी तक कुछ भी नहीं समझे, भक्ति का ABC भी नहीं समझे कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो इस सिद्धांत को हमने अपने जीवन में उतारना है, इसको अच्छे ढंग से समझना है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम भौतिक क्लेशों से, शरीर और मन के क्लेशों से छुटकारा पा लें। हम भक्ति मन की शांति के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह से धक्के खाकर आ गया, मुझे शांति चाहिए, है ना। चित्र कृष्ण अपने लक्षण बताते हैं, मैं शांति चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, ये सोचकर आऊंगा तो ये बोलता रहूंगा मैं शांति चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं। हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती, हमें अपने मन की शांति के लिए भक्ति नहीं करनी है। मन के क्लेश, शरीर के क्लेश बने ही रहेंगे। हमें तो ये देखना है, ये प्रार्थना करनी है कि कब वो स्थिति आएगी कि जीवन के हर पहलू में, हर परिस्थिति में मैं कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण की कृपा को देख पाऊं। ये दृष्टि मैं कैसे विकसित करूं, ये आध्यात्मिक परिपक्वता है, ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। ये परिस्थिति कैसे आएगी, ये गहराई मेरी भक्ति में कब आएगी, इसका हमें प्रयास करना, ये जीवन की पूर्णता है। जीवन की पूर्णता ये नहीं है कि सारे क्लेश कम हो जाए। क्लेश तो किसी भक्त कम नहीं हुए, प्रहलाद महाराज के जीवन में क्लेश कम हुए, उनके हिरण्यकश्यप पिता उनको कितना उनको कष्ट देते थे, एक बारी भी उन्होंने भगवान का नाम इसलिए नहीं लिया कि मुझे बचाओ, नहीं। पांडवों के जीवन में क्लेश कम हुए क्या? उनके जीवन में क्लेश आते रहे। लेकिन फिर ये इसका मतलब क्या हुआ? कर्मानि निर्धरति किंतु जो भक्ति भाजा, कि भगवान हर जो भी भक्ति में आता है भगवान उसके कर्म बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। परम संहिता में ब्रह्मा जी ये प्रार्थना करते हैं, या तो इंद्र गोपा अथवा इंद्र स्वकर्मा बंधान रूप फलम भाजनम आपनोति, कर्मानि निर्धरति किंतु जो भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। श्लोकार्थ ये है कि चाहे स्वर्ग के राजा इंद्र क्यों ना हो या एक छोटा सा बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये केवल आजकल की खोज नहीं है, ये ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, जो छोटा सा बैक्टीरिया जिसका नाम इंद्र गोपम है, गोपम मतलब बहुत छोटा सा कीड़ा बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया का नाम भी इंद्र है। एक बैक्टीरिया नामक इंद्र है, इंद्र नामक बैक्टीरिया है, और एक इंद्र नामक स्वर्ग का राजा है। बैक्टीरिया से लेकर स्वर्ग के राजा सभी के सभी कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, सभी के सभी, और केवल कृष्ण ही स्वराट हैं और कृष्ण के भक्त स्वराट हैं, बाकी सब कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो देवतागण ऐसे कर्म बंधन से बंधे हुए हैं कि वो उस जीव को उस कोटा से ना तो ज्यादा दे सकते हैं ना कम दे सकते हैं, दे आर ऑल्सो बाउंड, वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त किसी भी बद्ध जीव का भाग्य बदल सकते हैं। देवताओं के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि किसी बद्ध जीव के भाग्य को वो बदल दें, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त किसी भी बद्ध जीव के भाग्य को बदल सकते हैं। यहां राजा चित्रकेतु के भाग्य में कोई संतान नहीं थी और वो अंगिरा ऋषि के पास गए और रो रहे थे, अंगिरा ऋषि ने उनका भाग्य बदल दिया। वैसे हमें आध्यात्मिक पुरुषों के पास गुरु के पास अपनी भौतिक इच्छाओं के साथ नहीं लेना चाहिए, लेकिन राजा चित्रकेतु गए कि मुझे पुत्र दे दो, तो अंगिरा ऋषि जी ने बहुत बुद्धिमान से उनको एक ऐसा पुत्र दे दिया जो उनके जीवन में शोक लाएगा। और आगे जाके हम पढ़ेंगे इसी शोक की अवस्था में चित्रकेतु अंगिरा ऋषि से प्रश्न पूछते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों आया, आप मुझे कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए, और सब अंगिरा ऋषि और नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं और उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो भक्त लोग हर स्थिति में प्रचार का अवसर ढूंढते हैं, तो भक्त लोग जब हम शुद्ध भक्ति शरण प्राप्त करते हैं तो हमारे भाग्य में परिवर्तन आ सकता है। देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि भाग्य को परिवर्तन करते हैं, तो शुद्ध भक्ति में इतनी शक्ति है और शुद्ध भक्तों के संग में इतनी शक्ति है। एक बार जब प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने एक घड़ी दी थी, विदेशी घड़ी, और प्रभुपाद जी की फोटो भगवत दर्शन मैगजीन के पीछे आए, तो एक व्यक्ति थे जो कि चोरी करते थे, आप सबने सुनी होगी घटना। तो उन्होंने जब दर्शन मैगजीन देखी, पीछे देखा एक संत है और संत के हाथ में विदेशी घड़ी, रोलेक्स वॉच थी, बोला किसी ना किसी ढंग से घड़ी चाहिए, तो क्या गए इस्कॉन में आ गए, ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, और मौका ढूंढते रहे कब वो घड़ी मिलेगी, कब वो घड़ी मिलेगी। और प्रभुपाद जी उनको मौका देते, जाओ सब्जी खरीद के लाओ, अब चोरी करने की आती, आधी सब्जी खरीद लेते, आधे पैसे रख लेते, प्रभुपाद जी बाकी पैसा कहाँ है लेते रहते थे। ऐसा करते करते उनकी सेवा किचन में लगाई थी, वो बस मौका ढूंढ रहे थे। और एक बार प्रभुपाद ने दीक्षा का आयोजन किया तो उसके बुला लिया, उसको ही बुला लो, उसको दीक्षा भी दे दी, अपनी माला दे दी। अच्छा, तो दीक्षा भी दे दी, प्रभु जी कह रहे अपनी माला दे दी, और उन्होंने माला करनी शुरू कर दी, ये किया, और धीरे धीरे वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए और उनका नाम है हरिदास प्रभु, और वो ITV इस्कॉन टेलीविजन के जो डायरेक्टर हैं वो है ITV में, इस हरिदास प्रभु है ना। पूरा का पूरा उनका जो उद्देश्य था, कैसे वो घड़ी चुराने आए थे और वो प्रभुपाद जी के संग में आके बिल्कुल बदल गए। प्रभुपाद ने आंदोलन किससे शुरू किया? बड़े बड़े सन्यासियों से, महात्माओं से थोड़ी शुरू किया, सबके सब पापी जीव थे, बावरी स्ट्रीट में हिप्पीज, चरस, गांजा, LSD पीने वाले सबके सब कॉपी है। उनको प्रभुपाद ने अपने संघ से देखिए कितना शुद्ध कर दिया, सब शुद्ध वैष्णव बन गए। तो एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी हमारी सुकृति होगी पिछले जन्मों के? प्रभुपाद कहते हैं आई हैव गिवन यू सुकृति, मैंने दी है तुम्हें सुकृति। आप बोले मेरी सुकृति है स्पेशल आए प्रभुपाद वृंदावन से बावरी स्ट्रीट में उनको सुकृति देने के लिए। तो शुद्ध भक्त किसी के भाग्य को भी बदल सकते हैं, और यहां पे संसार में हर व्यक्ति अपने भाग्य को बदलना चाहता है कि नहीं? अभी सब लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम लोग उस दिन गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो उसमें पूरे रास्ते में एक ऐसा ही टेप चल रहा था, अपने भागे को बदली, केवल 11 रुपए, काले घोड़े की नाल, तो बस केवल 11 रुपए, सब कुछ बदल जाएगा आपका, केवल 11 रुपए। नितिन राम को कहते इसका खुद तो कुछ बदला नहीं, 11 रुपए से खुद ना बदला। लेकिन लोग कितने उत्साहित हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए कि बदले, कुछ ठीक नहीं चल रहा, बदले। क्या करना है हमें? शुद्ध भक्तों की सेवा करनी है। और हमारे जीवन जो भी क्लेश आ रहा है, वास्तव में भक्ति को बोला गया क्लेशाग्नि, भक्ति क्लेशाग्नि है। और साधना की स्थिति से ही ये क्लेश जलने शुरू हो जाते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, बस हमारे अंदर गंभीर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भक्ति करनी है। जिसने कृष्णा भावामृत को ग्रहण कर लिया है उसके ऊपर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। जिसने कृष्णा भावामृत को ग्रहण कर लिया, वन हु टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि वन हु हैज बिकम कृष्णा कॉन्शियस, नहीं, वन हु हैज टेकन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, इतनी बड़ी बात है। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि पापी से पापी जीव को भी भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। अगर आपको योग करना है, पापी लोग योग की विधि का पालन नहीं कर सकते, ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति सर्वोत्तम है और इतनी सरल है कि पापी से पापी, अधम से अधम जीव भी भक्ति स्वीकार कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको हम समझने का प्रयास करें। जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो बताया गया है क्लेशाग्नि, जो क्लेश होते हैं हमारे जीवन में उसके मुख्य तक तीन कारण बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। क्लेशमस्तु पापा तद बीजम अविद्यास्तु ते त्रिधा। तीन कारण है हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं उसके कारण। पहले हैं पाप, जो हम पाप करते हैं। दूसरा पाप का बीज, हमारी भौतिक इच्छाएं बीज होता है उसका। और तीसरा हमारी अज्ञानता। जब भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमारी अज्ञानता का भी नाश हो जाता है। अज्ञानता का अर्थ है हम अपने आप को शरीर समझते हैं, जैसे भगवान ऋषभ देव करते हैं, दूनम प्रमोता कुरुते विक्रम यद इंद्रिय प्रीतिया आपनौती। ऐसे लोग मूर्ख हैं जो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो अगला शरीर जरूर मिलेगा। अगला शरीर प्राप्त करते ही यानी कि दुख ही दुख। जैसे ही जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है दुखों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई नहीं रोक सकता, ये प्रकृति के नियम है। एग्जाम्पल देते हैं, आपने लंदन की फ्लाइट की टिकट ले ली है, बीच में 10 मिनट बाकी बोले नहीं मुझे नहीं जाना लंदन, अब कुछ नहीं हो सकता, अब लंदन में उतरना ही पड़ेगा आपको, अब ये शरीर मिल गया, अब आपको मृत्यु पानी ही पड़ेगी, अब कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार जैसे ही जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आया दुख शुरू। तो भौतिक प्रकृति के संपर्क में क्यों आते हैं? क्योंकि हम भोगना चाहते हैं, अज्ञानता। लेकिन जैसे ही हम भक्ति का पालन करते हैं ये अज्ञानता हमारी नष्ट हो जाती है। जितने ध्यान पूर्वक हमारे कृष्ण महामन का जप करेंगे उतनी जल्दी हमारी अज्ञानता का नाश होगा। बीजम, जो पाप करने का बीज है वो किसी और विधि से नहीं जा सकता, केवल कृष्ण भावामृत से, कृष्ण भक्ति से ही जब हमारे पाप करने का इच्छा भी होती है वो समाप्त हो जाती है। लोग जाके गंगा में स्नान करते हैं, पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान की बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन गंगा में स्नान करने से पाप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पाप करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, जो इच्छा है, वो समाप्त नहीं होगी। लेकिन भक्ति करने से पाप करने का बीज भी समाप्त हो जाता है। और तीसरा है पाप, जो हमारे पाप के फल हैं, जो हमारे जीवन में तरह के क्लेश आ रहे हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध जिनके फल हम भुगत रहे हैं, अप्रारब्ध जिनके भी फल अब नहीं भुगते, जो भी स्टोर हाउस में है, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। बताया गया भगवान उद्धव को भागवतम में 11वें स्कंध में बताते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिस ढंग से जंगल में आग लगने से सारे के सारे सर्प मर जाते हैं, उसी ढंग से भक्ति करने से सारे के सारे अज्ञानता रूपी सर्प मर जाते हैं। और जितना जितने भी पाप क्यों ना हो, भगवान गीता में कहते हैं अपिचेत से पापे भी सर्वे पाप सर्वे भी पाप कृतमा सर्वम ज्ञान लेने वे व्रजिनम संत रश्यसी। पापी से पापी व्यक्ति भी जब इस ज्ञान का अनुशीलन करता है वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति में इतनी शक्ति है। एक चंडाल के घर में भी जिसका जन्म हुआ है वो एक बार ही भगवान का नाम ले ले तो सारे के सारे वेदित अनुष्ठानों को करने के वो योग्य बन जाता है, उसके सारे के सारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो इस भक्ति की पूरी शक्ति को हम समझें और हम जानें कि श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा हुई है हम पर कि हमें ये भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करते करते हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें हम घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि हम उसमें भगवान की कृपा को देख नहीं पाते हैं। हम भगवान की कृपा को नहीं देख पा रहे, भगवान का हाथ नहीं देख पा रहे। जब एक स्त्री किसी व्यक्ति से प्रेम करती है, किसी पुरुष से प्रेम करती है, तो वो पुरुष अलग अलग वस्त्र रोज धारण करता है और स्त्री रोज उसको देखना चाहती है, तो स्त्री उसकी रोज नए नए पोशाकों को नहीं देखना चाहती कि स्त्री केवल उस अपने प्रेमी को देखना चाहती है। इसी ढंग से अगर हम भगवान से प्रेम करने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो जीवन की हर परिस्थिति में, ये केवल पोशाक है, बाहरी आवरण है, हर भौतिक वस्तु में, हर भौतिक परिस्थिति में हम कृष्ण की उपस्थिति को देखना चाहेंगे कि कृष्ण यहाँ पर उपस्थित है, कृष्ण का हाथ है, कृष्ण नियंत्रण कर रहे हैं। तो ये केवल इस दृष्टि का अंतर है, और इस दृष्टि को हम विकसित करेंगे तो हम भक्ति में प्रगति करेंगे। हम हमेशा ये याद रखें कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं और जैसे भी परिस्थितियां आ रही हैं ये मुझे सुधारने के लिए है। लेकिन अगर इसका हम गलत लाभ उठाएंगे, ठीक है कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं और भक्ति में मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगर हम ये करते हुए भी अपने आप को सुधारने का प्रयास ना करके वही पाप करने की अपनी प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे और पाप करते रहेंगे, फिर हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता, फिर हमें और कठोर से कठोर सजा मिलेगी ताकि हमारा शुद्धिकरण हो और फिर हम और कष्ट सहने पड़ सकते हैं। तो आज के श्लोक में हम देखते हैं कि अज्ञानतावश रानी कृतज्योति भगवान पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना, नो, वी शुड नेवर ब्लेम, वी शुड नेवर कंप्लेन, वी शुड नेवर क्रिटिसाइज, और यहां तक कि वी शुड नेवर आर्गू। जो भक्त हैं ये कभी भी चार कार्य नहीं करेंगे। हम जितनी मात्रा में किसी के दोषारोप करते हैं, जितनी मात्रा में किसी की निंदा करते हैं, जितनी मात्रा में किसी की शिकायत करते हैं, जितनी मात्रा में किसी के साथ तर्क वितर्क करते हैं, उसका मतलब उतनी ही मात्रा में हमारा झूठा अहंकार बहुत बड़ा हुआ है, उतनी ही मात्रा में हमारे भगवान के प्रति समर्पण कम है। ये इसके लक्षण है, हम देख सकते हैं। क्योंकि थोड़ी सी भी घटना हो गई हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, थोड़ी सी घटना हो गई हम शिकायत कर रहे हैं। ये हमारा केवल कर्तव्य वातावरण को बदलना नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि हर वातावरण में अहेतु की अप्रतिहता भक्ति कैसे की जाए। अन्यथा हम आज हम किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, फिर पहले किसी भक्त को ब्लेम करेंगे, भक्त को ब्लेम करते करते हम गुरु को ब्लेम करेंगे, गुरु को ब्लेम करते करते हम इस सिस्टम को ब्लेम करना शुरू करेंगे, सिस्टम को ब्लेम करते, सिस्टम किसका है, भगवान का, भी भगवान को ब्लेम करना शुरू करेंगे। हमारा विश्वास धीरे 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 ऐसे कम होता है। बाहरी रूप से हम माला कर रहे होते हैं पर अंदर से हमारे जो संदेह और संशय के जो दीमक हैं वो हमारे जो भक्ति की जड़ लता को, भक्ति लता की जो जड़ को वो काट लेता है, तो एक जीवन में बहुत खोखलापन अनुभव होता है। तो ये हमेशा हमें याद रखना, प्रैक्टिस की बात है, हमें याद दिलाते रहना चाहिए कैसा हम रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए हमें किसी ने हमें एक थप्पड़ मारा, अगर हम उसको सहन कर लेते हैं तो क्या हुआ, पूर्व जन्मों का जो कर्म था वो नलीफाई हो गया, खत्म होगी बात, आपने सहन कर लिया, खत्म। उसने थप्पड़ मारा, आपने वापस थप्पड़ मार दिया, तो क्या हुआ, एक नया एक्शन आपने जनरेट कर दिया। ये कर्मों की गति बहुत गहन है, बहुत गहन है, और बद जीव समझ नहीं पाता। अक्सर क्या होता है, जब हमारे सुख आ रहे होते हैं हमारे जीवन में, हम सोचते हैं बहुत कृपा है, कृपा नहीं है। जब सुख आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, पूर्व जन्मों का जो बैंक बैलेंस है, अच्छे कर्मों का फल है, वो खत्म हो रहा है। हमारा बैंक बैलेंस हमें दिखाया जाए, साथ साथ एक ऐसी कोई मशीन आ जाए, पुण्य और पाप का बैलेंस दिख रहा है, यहां पे आपकी गाड़ी आगे दिख रहा है, पुण्य कम हो रहे हैं, आप क्या कर रहे, सुखी हो गए दुखी हो गए। और हमारे अगर जीवन में दुख आ रहे हैं और दुख हो रहे हैं, बोले वहां पे जो डेबिट था हमारा पाप वो कम हो रहे हैं, हम सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें खुश होना चाहिए, चलो पूर्व जन्म के पाप कट रहे हैं, और जब हमें सुख की प्राप्ति हो तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए, अरे भाई पुण्य कर्म खत्म ना हो रहे हो, तो क्या करें, जो इस सुख में परिस्थितियां सब भगवान की सेवा में लगा, उसको भोगे ना, तो वो एटर्नल हो जाएंगे, वो फिर कम नहीं होंगे। इसलिए बोला यज्ञात कर्म अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, जो भी कार्य करें भगवान की प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए बिना हिचक के भक्ति करें और ईश्वर की परम इच्छा पर हर कर्म को छोड़ दें, प्रयास को नहीं कर्म के फल को।
कर्म करना मतलब कि प्रयास करना ना छोड़े, इससे वह इस जन्म में तथा अगला जन्म में सुखी रह सकेगा। तो इस कर्मों की गहनता को हम समझें, गहराइयों को समझें, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो वो होता है दिखता नहीं है, ये बड़ा गहरा विज्ञान है। तो इसके लिए हमें शास्त्र चक्षु चाहिए, शास्त्र चक्षुओं के आधार पर हमें हर घटना को देखनी चाहिए। इसलिए भक्त लोग हमेशा आनंद में रहते हैं और इसलिए हम नहीं तो हम भी राजनीतिक स्थिति की तरह छोटी छोटी बात पर भगवान को आरोप लगा सकते हैं या भक्तों को आरोप लगा सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को एक प्रश्न है?
धन्यवाद, मुझे आपने बहुत ही अच्छा बताया और आपने प्रवचन दिया। इसको कैसे समझना चाहिए बुढ़िया? आपने बताया कि जो भी ऐसे कष्ट आते हैं या चीज आती है तो उसमें भगवान का हाथ होता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन क्या एक भक्त के पास या एक व्यक्ति के पास अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई, उसको अपनी सुरक्षा करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? जैसे ये चीज तो इस चीज को भी बढ़ोतरी दे सकता है कि कोई, मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा, भारतीय लोगों की बात कर रहा हूँ, कि कोई जो है इसका गलत फायदा उठा के जो है दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करे, उनको तकलीफ पहुंचाए, तो क्या हमें अपनी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए उस स्थिति में? जैसे हम लोग देखते हैं, मुझे कि द्रौपदी का एग्जांपल लें, जब द्रौपदी का वस्त्र हन हो रहा था तो उन्होंने फिर भी साड़ी खींची और भगवान को याद किया और फिर भगवान आए उनको वस्त्र दिए। तो इस चीज को हमें कैसे समझना चाहिए कि हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हो, तो हमें अपना बचाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझे एक चीज तो ये,
द्रौपदी ने जब प्रयास किया था अपने आप को बचाने का तो बचा नहीं पा रहे थे, जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए तब भगवान आए।
प्रयास करना चाहिए,
तो हमें प्रबोध कर रहे हैं कि भगवान पर छोड़ दें। ओके, तो कुछ कार्य होते हैं जो हमें कर्तव्य के रूप में करने पड़ते हैं, हम कर्तव्य के रूप में करें और उसके बाद भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो हमें इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति करना है, आर्थिक उन्नति नहीं। जितना कम हम ईटिंग वेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग करेंगे उतना हम भगवान के पास अधिक और निर्भर करेंगे, और जितना हम अपने अरेंजमेंट्स करेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे, भगवान करने देंगे। द्रौपदी जब तक पूरी अपनी रक्षा करने का प्रयास कर रही थी, भगवान बैठे रहे, आए नहीं, वो पुकार रही थी, आप सही कह रहे हैं, पुकार भी रही थी और प्रयास भी कर रही थी, भगवान बैठे थे। रुक्मिणी देवी कह रही थी कि आप क्या कर रहे हो, आप चाहिए अभी नहीं। इसी ढंग से भागवतम दशम स्कंद में जब अनिरुद्ध का विवाह होता है और उस अनिरुद्ध अनुषा का विवाह, रुक्मी तभी लड़ाई होती है रुक्मी की, भगवान की रुक्मिणी के भाई के साथ जब लड़ाई होती है और भगवान उसके बाल काट देते हैं, तो जब भगवान रुक्मिणी के बाल काट देते हैं और उसका काफी उसका अपमान करते हैं तो रुक्मिणी माता को बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो सब कुछ सहन करके चुप रहती है। बाद में भगवान उनको बोलते हैं कि जब मैंने रुक्मिणी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसका अपमान किया और तुम चुप रही क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम मुझे कहीं खो ना बैठो, तो तुम्हारी इसी चुपी से, तुम्हारे इसे साइलेंस से, तुमने अपने कुछ नहीं बोला, तूने मुझे जीत लिया। तो भक्त के जीवन में जो ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उसको अपने व्यक्तिगत स्तर पे उसको कष्ट हो रहे हैं, वो डिफेंड नहीं करते, उसको चुप साफ सहन कर लेते हैं, जिसके लिए टेस्टिंग टाइम और कृष्ण पर निर्भर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिससे हमारे पूरे मिशन पर प्रभाव पड़ रहा हो, तब हमें डिफेंड करना चाहिए। व्यक्तिगत कष्टों में हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरे मिशन पे प्रभाव पड़ रहा हो तो निश्चित रूप से फिर हमें शेर की तरह कष्टना चाहिए, फिर नहीं सहन करना चाहिए।
मतलब इसमें मैं क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक और चीज आता है कि जैसे अगर हमें लग रहा है कि कोई हमें भौतिकवादी व्यक्ति एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो क्या हमें ऐसे देखना चाहिए कि इसमें भगवान का ही हाथ है, या प्रैक्टिकल वे में देखना चाहिए कि
जब भी ये बात होती है तो लोग इसी बात को ले आते हैं, ऑफिस में लोग मुझे एक्सप्लॉइट करेंगे, बिजनेस में लोग धोखा देंगे, चुपचाप धोखा खा लूं क्या? त्रिनादे भी सुनी चेन का मतलब क्या है कि कोई मुझे बुद्धू बना रहा है, मैं बुद्धू बन जाऊं क्या? ये मतलब नहीं होता। त्रिनादे भी सुनी चेन का मतलब ये नहीं है, सहनशील होने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमें धोखा दे हम चुपचाप धोखा खा लें। हमें हर वस्तु भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इसके लिए भक्त हमेशा बहुत
इंटेलिजेंट बुद्धिमान होते हैं, हर वस्तु भगवान की सेवा में लगाते हैं। कैसे लगानी है हमें देखना है, मूर्ख नहीं बनना कि कोई हमें एक्सप्लॉइट कर हम शोषण चुपचाप हो जाए, हमें देखना है कि उस परिस्थिति में कैसे भगवान की उत्तम सेवा हो सकती है, उन परिस्थितियों कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते,
डिपेंड करना अपने आप को बचाना चाहिए।
वो अपना डिपेंड नहीं है, भगवान की सेवा के लिए कर, अपने आप को थोड़ी डिपेंड कर, उस परिस्थिति को कैसे भगवान की सेवा में लगाना, ये देखो। जैसे आप ऑफिस में हैं, कोई आपको शोषण करके आपको समय नहीं दे रहा भक्ति करने का, प्रचार करने का, तो थोड़ी चुपचाप सहन करते रहेंगे, फिर आप ऐसे ढंग से करेंगे कि आप समय निकाल पाए ताकि भगवान की सेवा भी कर सके और साथ साथ अपने कार्य भी कर सके।
बाबा धन्यवाद भाई, प्रवचन में जैसे शुरुआत में जो श्लोक है, श्लोक का भी जो अर्थ है उसके मुताबिक ये है कि रानी जो है वो पर्सनली बेसिकली पर्सनल कैपेसिटी मतलब ब्लेम कर रही है भगवान को देखा जाए तो, और आपके प्रवचन में भी जैसे एक स्ट्रिंग जो मुझे लगा वो यही था कि लाइक सबने कंक्लूड भी किया, नो ब्लेम नो कंप्लेन नो आर्गूमेंट। सो इसको मतलब इसका 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 स्कोप क्या है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पर्सनल कैपेसिटी में हर्ट कर रहा है, पर्सनल कैपेसिटी में इंसल्ट कर रहा है, पर्सनल कैपेसिटी में अटैक कर रहा है, तो इट इज अवर रिस्पॉन्स, ये अगर कोई भक्त है तो ही हैज टू मस्ट मतलब कि टॉलरेट नोइंग, जैसे उसे तथ्य का अनुकंप समीक्ष मानो वो प्रिंसिपल आता है। और हम देखते हैं एक भक्त के लाइफ में दो उसके रोल्स होते हैं, एक है कि उसका एक पर्सनल कैपेसिटी में अपनी उनकी पर्सनल लाइफ है, और एक है ही में भी जैसा आपने बताया ही में भी रिप्रेजेंटिंग इस कौन, ही में भी रिप्रेजेंटिंग अदर डिवोटीज, ही में भी उस तो ऐसे सूरत हाल में क्या करना। जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त आया और उसने मान लीजिए हमारे भक्तों को लेकर कुछ बोल दिया और इस कौन को लेकर कुछ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, या कोई भक्त आया उसने बोला कि दूसरे भक्त जो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जिससे जो है बाद में जाके पूरे सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा, तो हाउ शुड वी रिएक्ट, शुड वी टेल देम दैट पर्सन यू डोंट ब्लेम यू डोंट कंप्लेन यू डोंट आर्गू एंड एट द सेम टाइम लाइक दैट पर्सन मे बी एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्शन दैट, मतलब वो भी इसको ही मालूम है कि अगर पर्सनल कैपेसिटी में है दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, बट इससे कल्चर खराब होता है, प्रेसिडेंस बनता है, आज एक है कल दस होंगे, तो इसमें क्या करना चाहिए।
हाँ, तो निश्चित रूप से जब हमें मिशन को रक्षा करनी है तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। और दूसरी बात इसका ये एक्चुअली देखना पड़ेगा, आप किस बात में डिटेल में जानना पड़ेगा। दूसरी बात से कई बार हम चिंतित भी हो जाते हैं, तो जब तक हमें अधिकृत ना किया जाए, ऑथराइज ना किया जाए ये आपकी सेवा है, तब तक हमें उछलना नहीं चाहिए उसमें, उसमें कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हो सोच सकते हैं कि हम अपना कंसर्न दिखा रहे हैं, नहीं हो सकता है हम अपराध कर रहे हो, क्योंकि जैसे चैतन्य चैतन्य में वर्णन आता है स्वरूप दामोदर जी चैतन्य महाप्रभु को करेक्ट करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को डांटते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वहां प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार केवल स्वरूप दामोदर कर सकते हैं और किसी के लिए ठीक नहीं है। स्वरूप दामोदर मिशन के बारे में सोच रहे थे कि आपके इस व्यवहार से जनसाधारण क्या सोचेगी, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत थी, इतना साहस था कि चैतन्य महाप्रभु को डांट रहे थे, और महाप्रभु बोला किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे डांटते, बोल तुम डांट सकते हो, तो कोई उनकी नकल मान ले, देखो स्वरूप दामोदर भी तो महाप्रभु को डांट रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़े कंसर्न थे कि महाप्रभु को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो मुझे भी ऐसा कुछ कंसर्न हो रहा है, तो मैं वरिष्ठ वैष्णवों को जाके गुरु को डांटना शुरू करूँ, क्या कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कर रहे। नहीं, बोले किसी भक्त को ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि ऐसा दुर्व्यवहार करे, अंटिल इलनेस वी आर ऑथराइज कि आपकी ये सेवा है।
तो ये था उसमें जो मेरे दिमाग में जो एग्जाम्पल था दैट वाज परीक्षित महाराज, लाइक परीक्षित महाराज डेस्टिन टू डाई लाइक दिस, उनको उस प्रकार से अभिशाप दिया गया, ही उस वक्त उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, रिएक्शन नहीं था, जैसा भी हुआ उन्होंने भुगता लास्ट में, बट जब तली ने एंटर किया द फर्स्ट थिंग इट वॉज ही ब्रीव आउट हिज सोल, वो चीज
ऑब्वियसली जब हमारे हम बाहर गए और इस्कॉन को कोई गलत बोले तो हम तो डिफेंड करेंगे, तो हम पहले ही बोले, लेकिन कई बार हम कंसर्न हो जाते हैं वातावरण को लेके कि वातावरण खराब हो रहा है, और उसके लिए हम फिर कुछ एक्शन ले पाते हैं जो कि इसलिए हम ऑथराइज नहीं, तो भी गलत हो जाए। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय।
निदाय गौर प्रेमानंदे।